ओम शांति। 7 दिसंबर 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम सभी प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट पर आप जुड़ सकते हैं, सवेरे भी शाम को भी। रोजाना के लिए एक ही लिंक है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं, और आपके पास कोई सुझाव है तो वो उसका भी स्वागत है, व्हाट्सएप कर भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सारा मदार कर्मों पर है। अभी परसों कहा था कि सारा मदार याद पर है, आज बाबा कहते सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। ज्ञान हमने लिया परंतु उसका कोई फायदा नहीं यदि हमने योग द्वारा अपने मन मना भाव करके उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया। जीवन में धारण तो कर लिया, योग करके हमने समझा तो दिया, परंतु एक्ट में नहीं लाए, कर्म किया नहीं, बुद्धि ने अच्छी तरह स्वीकार किया ही नहीं। हमने ज्ञान लिया, योग लगाया, अपने जीवन में धारण भी किया, एक बार किया फिर अगली बार रोक दिया, नहीं नहीं। तो एक्ट तो जब तक नहीं होगा तो कर्म होगा, तब भी तो हमें फल मिलेगा। जितना हमने कर्म किया होगा, कर्म की प्रारब्ध मिलती है, ज्ञान की प्रारब्ध नहीं मिलती, योग की प्रारब्ध नहीं मिलती, और क्या बोलते हैं, धारणा की प्रारब्ध तभी मिलेगी जितनी धारणा की है। और धारणा का परिणाम है कि हमने एक्ट कर्म किया। जब तक हमने कर्म नहीं किया तब तक वो धारणा भी नहीं है। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। कोई भी ऐसा काम हमने धारणा कर ली है, हमने एक बार किया, दो बार किया, उसके बाद हमने उसको करना छोड़ दिया, तो हम जो कर्म कर रहे हैं, कोई भी यदि उल्टा कर्म हमने कर दिया, श्रीमत के अनुसार नहीं किया, तो उसकी सजा खानी पड़ेगी। उससे कोई बचा नहीं सकता। ये बात हमारी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से बैठी हुई होनी चाहिए। कोई नहीं पूछेगा कितने समय से ज्ञान में चल रहे हो, प्रश्न। बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाबा की नजर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? उत्तर, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिमान है, और जो पतित है वे बुद्धिहीन है, वे बुद्धिहीन है। पता तो सबको चल गया है, जो ज्ञान में नहीं आए हैं उनको भी पता चल गया है, परंतु जिनमें पवित्रता की धारणा है, पवित्रता की धारणा क्या है, मैं आत्मा हूं और ये सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं। ये जब धारणा पक्की होगी तब वो बुद्धिमान है, इसी प्रकार से ही वो उनके साथ व्यवहार में आ रहे हैं तो बुद्धिमान है, और बेशक कहने को तो गाते रहे परंतु धारणा में नहीं है, कर्म में नहीं है, तो कर्म पतित पने वाले हैं, धारणा भी पतित पने वाली है, तो वे बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिमान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिमान बन रहे हो, तुम बच्चे क्या बन रहे हो, बुद्धिमान बन रहे हो। पवित्रता ही सबसे मुख्य है, पवित्रता ही क्या है, सबसे मुख्य है पवित्रता। इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे बच्चे ये आंखें धोखा ना दे। सबसे बड़ा धोखा आंखें देती हैं, ये बात सही है क्या? है जी,
सही है,
बिल्कुल सही है, मुझे डाउट है। कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि आंखें मेरे अधीन है, मेरी कर्म इंद्रिय है, ये शरीर का अंग है, आंखें मुझ आत्मा का रचना है, कर्म करने के निमित्त है, इसलिए इसको कर्म इंद्री कहते हैं। तो यदि कर्म इंद्री मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसका कारण कौन है? ये कर्म इंद्री है, मेरा कर्मचारी है अभी आप, तो कहीं ना कहीं मेरी वृत्ति दोष युक्त है, मेरी वृत्ति दोषी है, मेरे वृत्ति में अभी संस्कार दोषपूर्ण है, जिसके कारण मेरी दृष्टि दोष वाली है। अभी मुझे अपनी वृत्ति पर और काम करने की जरूरत है, मेरा कोई एक ऐसा संस्कार है, एक दो चार जो भी, जो अभी तक मैंने बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं बनाए। आंखें तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इन्हीं आंखों से मैं चाहूं तो किसी को बैन की दृष्टि से देखूं, नहीं तो विकारी दृष्टि से देखूं। देख कौन रहा है? आंखें तो नहीं देख रही है, आंखें तो खिड़कियां हैं, देखने वाली तो मैं आत्मा हूं। मैंने स्वयं को अभी आत्मा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए मेरी दृष्टि दोष युक्त है। फिर बाबा ने क्यों कहा आंखें धोखा ना दे? क्योंकि गहराई से समझने वाले सामने बच्चे नहीं बैठे हैं, इसलिए बाबा उतनी बात करते हैं जितनी बात से सामने वाले बच्चे समझ जाए। गहराई से समझने वाले बच्चे भी अपने आप समझ लेंगे, परंतु जो सामने बैठे उनको तो समझ में आ जाना चाहिए ना। क्योंकि जितनी बुद्धि सामने वालों की है उसी के अनुसार बोला जाना जरूरी है। ये साइकोलॉजी बाबा की समझ के हमें मुरली को पढ़ना है। एक से संभाल करना है, किससे संभाल करना है? आंखों से संभाल नहीं करनी, हमने अपनी वृत्ति की संभाल करनी है। क्योंकि जैसी मेरी वृत्ति होगी वैसी मेरी दृष्टि होगी, वैसे मेरे बोल होंगे, वैसे मेरे कर्म होंगे। तो ये बात हमें अपने आप में समझना है, इनसे संभाल करना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, ये जुल्म लगता है, परंतु जब समझ में आ जाए तो ये सहज लगता है। देखते हुए भी नहीं देखो, क्योंकि ये अब मरने वाली है, इस दुनिया को आग लगने वाली है। ये सारे महल, ये सारे साधन शुद्ध होने के लिए भट्टी में पड़ने वाले हैं, इस यज्ञ में स्वाहा होने वाले हैं। इसके बाद नई दुनिया, स्वर्ग को याद करो, अर्थात मैं अपने अंदर एक एक संस्कार चेक करूं, उसमें अभी कितनी कमी है, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार पूरे बने हैं या नहीं बने, उनकी कमी को मुझे चेक करना है। स्वर्ग को याद करने का मतलब है कि मैं स्वर्ग के लायक कितना बना हूं। इसी समय वो आग लगे तो क्या मैं स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हूं? क्या मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा? चला तो जाऊंगा, पद क्या प्राप्त करूंगा? पद क्या होगा मेरा? यदि अभी मेरा शरीर छूट जाए तो मेरा स्वर्ग में पद क्या होगा? इस पर अपने आप में बैठकर सोचना है। यह है स्वर्ग को याद करना। स्वर्ग में जा भी सकूंगा कि नहीं जा सकूंगा, ये चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अभी हम थोड़े दिन के मुसाफिर, इस पुरानी दुनिया में बस थोड़ा समय, दिन भी क्या, थोड़े समय के मुसाफिर। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। कब कहा था बाबा ने? 69 से पहले कहा था, थोड़े दिन पड़े, अब क्या पड़ा होगा? 69 से पहले थोड़े दिन थे, अब कितना टाइम रह गया होगा? 12। अभी थोड़े दिन की मुसाफिरी है। दुनिया के मनुष्य समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष यहां रहने का है। तो बच्चों को तो निश्चय है ना कि ये बातें भूलो नहीं। यहां बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में गद गद होना चाहिए, गद गद खुशी, इतनी खुशी हो कि आंखें छलका जाए, मुख बोलने के लिए बोल ना सके, मुंह से शब्द निकले नहीं। इसे बोलते हैं गद गद होना, रोंगटे खड़े हो जाना। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ विनाश होने वाला है। देखते हुए उसको यूज करने से पहले हमें एक दम ये संकल्प आ जाए, ठीक है ड्रामा अनुसार ये चीज मेरे को प्रयोग करने के लिए मिली है, इसका लाभ उठाया जाए। परंतु कभी भी चली जाए मेरी अवस्था खराब नहीं होगी, मेरी अवस्था खराब नहीं होगी, ये उसको छूने से पहले अपने आप को समझा देना है। किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते ही पहले ही समझा देना है ये आया है, इसका लाभ उठाया जाए। परंतु अगले पल चला जाए तो कोई बात नहीं, काम
अभी बचता
है। जी
मेरे
ऊपर
इतनी मन घड़न कहानी सुनाता है, एक ही चेयर रखकर दौड़ता है और वो भी एक बार भी नहीं, तीन चेयर आदमी,
ताकि हम जो है इतना इस झमेले में फंसे हुए हैं। मैं अपने आप को पढ़ने भाई जी, मुरली पढ़ना तो सारे कर सकते हैं,
मन गड़न कहानी सुनाना हर आदमी नहीं जानता,
नहीं जानता ना, परंतु ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि इसको जब हम अपने आप को बैठकर मुरली पढ़ते हुए साथ के साथ समझाते हैं, वो बाद में नहीं समझा सकते, तो क्योंकि हमने जो समझाना है वो रोज आना हम पक्का करते जाएंगे।
हाँ
जी, जो नए भाई जी मुरली में नया कुछ लाए बाबा तब ना, बताओ क्या क्या नया बताया आज, कोई नया बताया अभी तो मुरली शुरू नहीं किया। ठीक बात है, शाम को जब मुरली खत्म होगी ना फिर पूछेंगे कि बताना कि आज नया क्या बताया। ठीक है, तो मेन बात हमें समझनी है कि विनाश होने वाला है, विनाश को अनुभव भी करना है, हो ही नहीं ना। मैं वही तो कहा था कि बाबा देखो 69 से कहता आ रहा है विनाश हो नहीं रहा, विनाश हो नहीं रहा, तो बाबा कहते बच्चे इस विनाश को रोक के तुम बैठे हो, तुम रोक के बैठे हो, क्योंकि
हमारे हाथ में है कि हम रोक के बैठे हैं।
हाँ
अरे बाबा तू ये पल में सब कुछ कर सकता है,
नहीं कर सकता बाबा, पल में कुछ नहीं कर सकता
बाबा,
यही तो बता रहा हूँ ना। मतलब हमें सबसे बड़ी बात ये सोचनी है कि परमात्मा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ मार्गदर्शन कराने के
ले रहा है, अपने मार्ग से कुछ कर ही नहीं सकता, अपने दिमाग को
परास्त कर रहा है। मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ अपना दिमाग खराब, मेरा तो दिमाग खराब हो, बाबा आकर मेरे दिमाग को ठीक कर रहा है, मेरे को कहता है अपने आप को समझाओ कि जिन चीजों को तुम देख रहे हो, जिन चीजों को यूज कर रहे हो, ये ड्रामा अनुसार आपके पास आई है कुछ देर के लिए, जितनी देर आपका पार्ट है इन चीजों को इन व्यक्तियों को आप यूज करो, और यदि पार्ट चेंज होता है और कोई भी आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है या कोई भी वस्तु आपसे छिन जाती है या आप उसे छोड़ देते हैं, किसी और ने उसे यूज करना है तो वो करेगा, तुम हलचल में नहीं आना। ये बात हमने अपने आप को समझाई हुई होगी तो जब वो हमारे से बिछड़ेंगे, वो चीजें हमारे से छूटेंगी, तो हम उस समय निश्चिंत रहेंगे, नहीं तो हाय निकलेगा, नहीं तो हाय निकलेगा, शरीर को दर्द होगा तो हाय निकलेगा, परंतु शरीर को दर्द ना हो उसके लिए पहले से ही तैयार करना पड़ता है। जब किसी फौजी को गोली लगती है जो डरपोक होता है वो एक ही गोली से लगी कहीं हो पहले मर जाता है, और जिसको डर जिसको पता होता है कि गोली मेरे को नहीं मार सकती, मैं इस गोली को निकलवा दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, वो अपने जीवन की आस को खत्म नहीं करता। जो जीवन की आस को छोड़ देता है वो मर जाता है। तो इसलिए हमने पहले से समझाया हुआ हो, फौजी को पहले से सारी बातें समझाई जाती है कि गोली मार नहीं सकती आपको, आपकी गोली हम निकाल देंगे, आप निश्चिंत रहना है, आपने आगे बढ़ना है। तो उन्हें हाँ मतलब गोली से आपको गोली निकल जाती है, मरता नहीं है। कहाँ गोली लगने पर मौत का चांस कितना है, कहाँ गोली लगने पर मौत का चांस कितना है, इसलिए समझाया जाता है कि टांग पर गोली मारनी है, हाथ पर गोली मारनी है, यदि आप सैनिक है पुलिस में है तो। परंतु जहां आप मोर्चे पर आ गए हैं खत्म करना है वहां गोली मारनी है, जहां वो अगला सांस ले ही ना सके, तो उनको पता होता है कहां मारना है कहां नहीं मारना है। तो यहां भी बाबा हमें रोजाना अलर्ट कर रहा है कि गोली कैसे चलानी है। तो गोलियां चलाने के लिए सावधान होता है। अब आत्मा ने 84
गोली चलाते देख लेंगे।
हाँ तो समझे नहीं बात को, जिसको जैसी भाषा समझ में उसको वैसे समझाना पड़ेगा ना। 84 जन्म लिए हैं, अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। मतलब कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं जानता कि गोली कहाँ चलानी चाहिए और कहाँ से खतरा है जल्दी से जल्दी। तो घर ले जाने के लिए पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं, तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए, नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई दुनिया कैसे बनती है, कैसे होती है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। हमने अनेकों बार चक्र लगाया है, अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवी देवता रहते हैं, नई दुनिया में हम थोड़े थोड़े से ही देवी देवताएं रहते हैं, मनुष्य नहीं होंगे, मनुष्य तो कलयुग में होते हैं। बाकी कर्मों पर सारा मदार है, मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वे खाता जरूर है, वो खाता वो खाएगा अंदर अंदर, पाप कर्म कर लोगे अंदर अंदर आपकी बुद्धि आपको दुख देगी देगी, आपको घुटन होगी, पकड़ा गया तो ये हो गया तो वो हो गया। तो मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वे खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसा पाप तो नहीं किए हैं, ये पतित छी छी रावण राज्य है, ये धुंधकारी दुनिया है, अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते, भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो, अभी बाप का हाथ मिला है, बाप के सहारे बिगर तुम विश्व वैतरणी नदी में गोते खाते थे, आधा कल्प है ही भक्ति ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी नई दुनिया में चले जाते हो, अभी तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पतित छी छी से गुल गुल कांटों से फूल बन रहे हो। ये कौन बनाते हैं, बेहद का बाप, लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। तुम ब्रह्मा और विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान गए हो तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए। मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन, मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन, ये सब संगम पर ही होता है, ये सब कहाँ होता है, संगम पर ही होता है। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं पुरानी और नई दुनिया का, ये है संगम युग। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, लाइन समझ में आई है बात, फिर से देखो, बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है। हम सब आत्माएं तो पाठ बजाने के लिए आई हैं, हम सब एक्टर हैं, तो परमात्मा भी डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी बनता है, वो भी एक्टिंग करने के लिए इस संसार में आता है। कितना समय एक्टिंग करता है?
100 साल।
100 साल के लिए वो भी इस धरती पर पार्ट बजाने आता है। तो हीरो कौन हुआ, लक्ष्मी नारायण या शिव बाबा?
भाई 100 साल पूरा कब करता है? संगम का नाम तो दे दिया।
हाँ जी,
संगम पर आता है।
हाँ जी,
तो 100 साल कहाँ हुआ?
कितना हो गया? कितना हो गया? 100 साल नहीं हुआ तो कितना हुआ है? अब देखिए 1936 लगाओ या 1937 लगाओ, ठीक है, 64 साल वो हो गए और 24 साल ये हो गए, 88 साल पूरे हो गए। बाकी कितने चाहिए बताओ?
12 साल
मिल जाएंगे, चिंता क्यों करते हो? हाँ बताओ।
12 साल की बात नहीं, एक बाबा तो चला गया ऊपर, कहाँ बैठा है बाबा यहाँ?
कौन कौन ऊपर से
चला गया?
कौन चला गया?
दीदी भी चली गई, दादी भी चली गई।
कहाँ चले गए?
वो यही तो है।
नहीं कहाँ चले गए ये बता।
नहीं
भाई जी, भाई जी बात यह आती है, भाई जी आपको ना समझ में आता हो तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अमर आत्मा है, आप ये शरीर छोड़ेंगे तो यहीं जाके जन्म लेंगे, जिनके साथ हिसाब किताब है, तो उन्होंने भी तो यहीं जन्म ले लिया ना, वो अपना पार्ट बजा रहे। कौन पार्ट नहीं बजा रहा?
100 साल का पार्ट कौन बजा रहा?
शिव बाबा बजा रहे।
कहाँ है बाबा, दिखाओ मुझे।
हाँ, या जब ब्रह्मा बाबा के तन में आए थे तो किसी ने देखा था?
हाँ, देखा था।
गए थे माउंट आबू में मिलने के लिए, तब देखा था?
देखा था
ना, तो तब बाबा एक तन का आधार लेकर ब्रह्मा बाबा के तन से समझा रहे थे, फिर समृद्धि हुई और ब्रह्मा बाबा को अपना काम शिफ्ट करना पड़ा, तो फिर दादी के तन से पढ़ाना शुरू किया। और अब उसके पास सोचिए कि जब द्वापर युग शुरू होता है तो द्वापर युग में सभी धर्म पिताओं को पकड़ना है कि नहीं पकड़ना, सभी धर्म पिताओं के द्वारा सारे धर्मों की पालना करनी है कि नहीं करनी है, उनको कौन पकड़ के लाएगा, उनको डायरेक्शन कौन देगा, उनको कैसे डायरेक्शन देना है, किसके द्वारा डायरेक्शन देना है, उनका भी तो पार्ट बजना है ना। तो अभी पूरे वर्ल्ड
पूरा सब्जेक्ट समझाओगे ही नहीं।
हाँ, तो देखिए कसूर तो मेरा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर तो बात यह आती है समझेंगे तभी, समझना आपको भी है, आपको कोई बात नहीं।
मुझे समझाया उतना मैं समझ गया, लेकिन अभी 12 साल हो गए, तो 12 तो ये पड़े, उससे पहले चला गया,
चला नहीं गया।
दादी की बात में किसकी आत्मा में आके पढ़ा?
देखिए बाबा ने सभी धर्मों को भी तो स्थापन करना है ना, परमात्मा भल डायरेक्ट एक धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु इनडायरेक्ट सभी धर्मों की स्थापना करने के लिए बाबा कहते मुझे किसी भी आत्मा के तन का आधार लेना हो तो मैं आधार लेकर अपना काम कर लेता हूं, परंतु वो तैयार हो और मेरा पाठ हो। पाठ होना बहुत जरूरी है, जिसके तन से पाठ बजाना है उन तनों का आधार लेकर।
धर्मों का तो किसी को समझाता ही नहीं,
क्यों नहीं समझाता?
इसको एक ही धर्म की स्थापना करता हूँ, उसके बाद में अपने अपने टाइम पर जो दूसरे हैं वो आते हैं।
भाई जी आते हैं वो आएंगे बाद में, परंतु पढ़ेंगे तो अभी, उनको वो परमात्मा को पिता कैसे कहेंगे?
शाखाएं अलग है, अलग ही उनकी ब्रांच है।
भाई जी बेशक शाखाएं हो, उनको इनडायरेक्ट किसी ना किसी ब्रह्मा कुमार भाई बहन के द्वारा ही तो मैसेज मिलेगा। अब ब्रह्मा बाबा तो है नहीं मैसेज देने के लिए, गुलजार दादी है नहीं मैसेज देने के लिए, अब दादियों के द्वारा जिन आत्माओं तक मैसेज जाना था उन आत्मा तक दादियों ने मैसेज पहुंचाया। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर देश के अंदर, हर जाति के अंदर, हर धर्म के पास मैसेज जाना है तो आगे वाले भाई बहन पर पहुंचाएंगे ना, उसमें आप भी जिम्मेवार बनेंगे किसी आत्मा तक मैसेज पहुंचाने के। तो जहां आपको कोई डाउट होता है आप वो प्रश्न करें, तो परमात्मा अभी गया नहीं है, परमात्मा यही है और वो किसी के भी द्वारा जिनको संदेश देना है उनको बुलाएंगे। तो दिखाई तो आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है कि ये भगवान को मैं पकड़ कर दिखा दूं। उसके लिए हम रोजाना कहते आ रहे हैं, रोजाना अपने आप को भी समझाते आ रहे हैं और सबको समझाते आ रहे हैं कि परमात्मा इन आंखों से देखे जाने वाली चीज नहीं है। उसे हम किसी भी दुनिया के सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। तो हमारा जो प्रश्न था, हम यहाँ पर थे कि पतितों को पावन बनाने आओ, बाप का भी इस संगम पर पार्ट है। बस वो हीरो नहीं बन सकता, हीरो उसे कहा जाता है, हीरो हीरोइन राधा कृष्ण को कहेंगे जो आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं, आदि से अंत तक पार्ट बजाते हैं, वो इस ड्रामा के हीरो हीरोइन है। जो उनके साथ जैसा पार्ट बजाते हैं हीरो हीरोइन उसे कहा जाता है जो नाटक के आदि से अंत तक पार्ट बजाए। की रोल सारे इस वर्ल्ड ड्रामा का की रोल शिव बाबा है, क्योंकि सारी कहानी शिव बाबा से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी धर्म की हो। इसलिए शिव बाबा को मेन डायरेक्टर की डायरेक्टर कह सकते हैं, मेन मुख्य करेक्टर कह सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा लिंक उसके साथ है, बाकी पार्ट उसका नहीं है। पार्ट उसका सिर्फ 100 वर्ष का है और सभी आत्माओं को एक साथ घर लेकर के जाएगा, किसी भी आत्मा को याद छोड़ के कैसे जाएगा, चला कैसे जाएगा परमात्मा। उसने सभी आत्माओं को लेके जाना है, कैसे उनको पकड़ना है, कैसे उनको समझाना है, सभी किसी को छोड़ के जाएगा तब जा नहीं सकते ना। पहले कहीं
बनाए हैं आपने
सत्युग त्रेता द्वापुर कलयुग,
तो ये चार जो है एक साथ लेके जाएगा तो वो फिर अलग अलग कैसे वितरण होगा।
भाई जी यही तो आपको नहीं समझा ना इतने सालों में, यही बात तो आपको समझनी चाहिए थी ना कि अभी हम आत्माएं जब घर जाएंगी तो सबकी मेरिट बन जाती है कि कौन कितना पवित्र बना, मेरे डायरेक्शन पर परमात्मा से पढ़कर कितना पवित्र बना। जो 100% पवित्र बना वो सत्युग के आदि में आएगा, 75 से 100 नंबर लिए वो सत्युग में आ जाएंगे, जिन्होंने 75 से कम नंबर लिए, 50 से ज्यादा लिए वो त्रेता में आएंगे, जिन्होंने 25 से 50 तक लिए वो द्वापर में आएंगे, जिन्होंने 25 से कम नंबर लिए वो कलयुग में आएंगे। तो सारी आत्माएं जब आ जाती हैं, सभी आत्माओं को पढ़ाकर यहीं पर पढ़ाते हैं, परम धाम में नहीं पढ़ाते, यहीं पढ़ाकर फिर उनको घर लेकर जाते हैं। क्योंकि ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया कि जिन दातुकियों कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, वहां से आपके पास जो प्रश्न आया तो आपने पूछा, यदि आप बात नहीं करते तो आपके पास प्रश्न नहीं उठता और आप पूछते नहीं। ठीक है क्या, प्रश्न पूछने से आंसर मिलता है, बाबा हमारे सभी उत्तरों सभी उत्तर देने के लिए बैठा है। तो ये हम बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि बाबा का संगम पर पूरा पाठ चलता है, एकदम एक एक आत्मा को कहते चाहे प्यार से चलो चाहे मार खा के चलो, सबको लेके जाऊंगा, किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सबका बाप हूं। चला कैसे जाएगा, नहीं छोड़ेगा। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी। परमात्मा क्रिएटर भी है डायरेक्टर भी है, तो उनको उनकी जरूर एक्टिविटी होगी ना, एक्टिविटी खत्म थोड़ा हो जाएगी। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता, जो मेन समझने जहां से मैं वापस गया था कि परमात्मा को आदमी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमें बहुत समझना था। परमात्मा को आदमी नहीं कहेंगे क्योंकि वो अपने लिए शरीर की रचना नहीं करता, वो यहाँ शरीर लेकर अपना शरीर बनाकर कर्म करना करता नहीं है, पार्ट बजाता नहीं है। मतलब नारायण को आदमी कहेंगे परंतु उसको क्या कहेंगे, दिव्य गुणों वाली आत्मा, परंतु जो आसुरी गुण वाली आत्मा कलयुग वालों को, तो वास्तव बाबा को आदमी नहीं कहेंगे। ये लाइन याद रखनी है, मेन बात है। उनको तो अपना शरीर ही नहीं, क्योंकि उसके पास अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए उसे आदमी नहीं कहेंगे। बाकी सब मनुष्य व देवता कहलाते, सब मनुष्य वह देवता, देवता उन्हें कहते हैं वो मनुष्य जिनमें दिव्य गुण है, और जिनमें दिव्य गुण नहीं है तो आसुरी गुण है, उनको मनुष्य कहा जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि सत्युग में देवता होते हैं और कलयुग में, परंतु शिव बाबा को ना देवता कहेंगे ना मनुष्य कहेंगे, शिव बाबा को देवता भी नहीं कहेंगे मनुष्य भी नहीं कहेंगे। ये बात अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझानी है। बाकी तो सभी 33 करोड़ देवी देवता सब मनुष्य है, देहधारी हैं। ये तो टेम्परेरी शरीर लोन में लिया हुआ है, गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए हैं। तो जब उन्होंने टेम्परेरी शरीर लेना है, वो जिसके भी शरीर को धार ले उसका पार्ट है, और जिस आत्मा का पार्ट है कि परमात्मा ने उसके तन का आधार लेकर कुछ आत्माओं का कल्याण करना है, वो अपने आप ही उसके शरीर का आधार लेगा। और दो लाइनें तो बोलनी है, एक लाइन तो बोलनी है, एक शब्द तो कहना है, वह उसके मुंह से एक शब्द कहेगा वो उसको समझ में आ जाएगा, उसका कल्याण हो गया। अब चाहे नखरे करता रहे, चाहे अपने आप को समझता रहे कुछ भी कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, काम बाबा अपने आप कर लेता है। गर्भ से थोड़े पैदा हुए हैं, बाप खुद कहते हैं बच्चे शरीर बिगर में राजयोग कैसे सिखलाऊंगा। अब किसी को राजयोग सिखलाना है, शरीर का तो आधार चाहिए ना, बिना शरीर के बाबा बोलेगा कैसे। आप कहीं पर चले गए हैं, आपको यदि समझाना नहीं आ रहा है तो बाबा आपके तन का आधार लेकर जिसको समझाना का टाइम आ गया होगा ना, उसको समझा के चला जाएगा, आप बैठे रहना वहां। आपको समझ में नहीं आएगा तो उनको समझ में आ जाएगा, उसने अपना काम करना है। जो आपको समझना है उतना आपने समझना है, फालतू आप नहीं समझ सकते, परंतु आपके द्वारा जिन आत्माओं का कल्याण होना है वो शिव बाबा आपके शरीर का आधार लेकर अपना काम कर जाएगा। हमको मनुष्य लोग भल कहें कह देते हैं कि ठीक कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके, यहां इस पुरुषोत्तम संगम युग पर देवताएं राजयोग सीख कर देवता बनते, मनुष्य से राजयोग सीख कर क्या बन जाते हैं, देवता बनते हैं। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, हमने अभी 84 का चक्र पूरा किया है, बाप कल्प कल्प आते हैं, बाप खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, वे फिर 84 का चक्कर लगाते हैं, शिव बाबा तो 84 के चक्कर में नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा ही सुंदर से श्याम बनती है, ये बातें दुनिया में किसी को पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबर वार ही जानते हैं माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं, माया किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है, बाप को सब मालूम पड़ता है, माया ग्रह एकदम हप कर लेती, माया ग्रह, ग्रह माना मगरमच्छ, बाप माया को कह रहे माया मगरमच्छ एकदम पूरा का पूरा आदमी निकल जाता है मगरमच्छ, सीधा का सीधा, हाँ सीधा अंदर घिसेरता है, खींचता है पूरा का पूरा। हाँ जी, कैसे भी पकड़ा जाए, हाँ उसको वहीं से खींचे अंदर, अंदर सीधा अंदर खींचता है, आप तो कर ले जो कुछ करना। ये बाप अच्छी रीति जानता है, ये बाप अच्छी रीति जानते हैं, ऐसे नहीं समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, बाप सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना, माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल देती है, जैसे मगरमच्छ कच्चा ही पेट में खींच लेता है, पकाने की जरूरत ही नहीं है, बाद में अपने आप पेट हिसाब लगाता रहेगा कैसे उसको खाना है। ऐसे बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझ लेते हैं आत्मा अंतर्यामी है, आत्मा क्या है, अंतर्यामी है, बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है, हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना, बहुत ही छी छी चलन चलते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी बाप को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है, माया से अपने आप को संभालना है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, पर तो जिसके भाग्य में बुद्धि में बैठना नहीं है, बाप समझा रहे हैं परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। वे अंदर अंदर खाता रहेगा, वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा, बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये तो रावण की दुनिया है, रावण की दुनिया को हम याद क्यों करें भाई, हम क्यों याद करें रावण की दुनिया को, हमें तो नई दुनिया में जाना है। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है, खुशी रहती है ना। अब से बाबा आपके लिए क्या बना रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं पुराने मकान को टूटता है तो टूट जाए। ये बाबा कहते हैं मेरी गिरा रखा इसने, नहीं ठीक है, तो खुशी रहती है। ये तो बेहद की बात है, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है, क्योंकि बिना गिराए बन नहीं सकता ना, तो पहले हम गिराते क्यों है उसको, हमें पता ये बेकार है। तो इसलिए बाबा कहते ये दुनिया जो देख रहे हो ये बेकार है, अब नया नया मकान तुम्हारे लिए बाबा बना रहे हैं। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे, हम विकारों के वश हो कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो जो नहीं आते हैं वे तो माया के वश, वे तो क्या हो गए, माया के वश हो गए, बाप के पास हैं ही नहीं, टेटर बन गए हैं, पुराने दुश्मन पास चले गए हैं। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है, ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती है। कितने खत्म हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर जाते हैं हम ऐसे करेंगे ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हैं, आज ये हैं नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ, तुम्हारी लड़ाई किसके साथ है, दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है, दुनिया में कोई भी नहीं जानता। वो इतना जरूर जो संस्कृत के विद्वान हैं, वो इतना समझ लेते हैं कि माया कुछ है नहीं, परंतु उसके साथ हमारी लड़ाई कैसे हो सकती है ये उनको समझ में नहीं आता। माया से लड़ाई कैसे होती है शास्त्रों में फिर दिखाया है, देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई, फिर कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई, राम और रावण की लड़ाई हुई। कोई से भी पूछो ये दो बातें शास्त्रों में कैसी हैं, देवताएं तो अहिंसक होते हैं, वे होते ही हैं सतयुग में, वे फिर क्या कलयुग में लड़ने जाएंगे? असुर सतयुग में आ नहीं सकते, वो कैसे लड़ेंगे? वो देवता कलयुग में क्यों आएंगे लड़ने के लिए? असुर क्यों जाएंगे सतयुग में लड़ने के लिए? कैसे लड़ाई हो सकती है उनकी? जब देवता होते हैं तो असुर नहीं होते, जब असुर होते हैं तो देवता नहीं होते। ये गपोड़े कैसे लिखे गए? संगम पर कहीं भी कोई भी मतलब देवता जिसको कहोगे वो है ही नहीं संगम पर। तो ये संगम तो हमें समझ में आया है कि एक्चुअल में कोई भी असुर नहीं है, कोई भी देवता नहीं है, ये गुण है। ये गुणों की लड़ाई हमारे अंदर चल रही है। ये दुनिया वाले थोड़ा जानते हैं कि हमारे अंदर ही शैतानी विचार हैं, हमारे अंदर आप देवी विचार आ रहे हैं। ये युद्ध तो बाबा ने हमें आके समझाया। बाकी कोई इस समय कोई देवता और असुर आपस में लड़ तो ना रहे हैं। जो भी लड़ रहे हैं इस दुनिया में, जो भी दो देश आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों शैतान हैं। उनमें से किसको देवता बता सकते हो आप? दोनों शैतान है। वो उस पर बारूद चला रहा है, वो उस पर बारूद चला रहा है। देवता तो कर ही नहीं सकते, किसी को दुख देने का संकल्प भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा के पास न्याय है। अन्याय हो नहीं सकता, वो किसी को दुख देने की सोच ही नहीं सकता। यदि आज वो दूसर बाबा का बच्चा बन करके भी किसी को दुख दे रहा है तो उसे क्या कहोगे? देवता? शैतान? बाबा उठा करके अपने गोदी में से फेंक देता है बाहर, जा रावण के बच्चे कर ले अपना जो काम करना है। ठीक है ना? ये तो सिर्फ जो दुनिया में हम देख रहे हैं, चारों तरफ सारी दुनिया शैतान बनी हुई है। उसमें से आप जो हम सब चुने गए बच्चे हैं, वो भाग्यशाली हैं कि जो अपने आप को देवता बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब कौन कितना भाग्यशाली है वो उस आत्मा का अपना पास है। जो दुख नहीं दे रहा, आपकी मुरली का साध यही है, वही तो देवता है ना। वे फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? कौरव और पांडवों का भी अर्थ नहीं समझते। अब ये तो बाबा ने आके बताया ना, पांडव प्रीत बुद्धि पांडव और परमात्म विपरीत बुद्धि कौरव। शास्त्रों में जो लिखा है वो पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है, ब्रह्मा बाबा की। जब ये ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में ये लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर बाप बैठा था, तो इन द्वारा उस गीता को भी छुड़वा दिया। अभी बाप द्वारा कितना सोजरा मिला है, आत्मा को ही सोजरा होता है, तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे, कहते थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे, परंतु वे कैसे आएंगे? आप कैसे उस पर बलिहार जाएंगे? ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता था। मंदिर में जाकर हम कहते थे भगवान आओ, दर्शन दो, गीता का ज्ञान सुनाओ, हमारा कल्याण करो, परंतु ये नहीं जानते थे वो आएगा कैसे। किसी को पता ही नहीं कि वो कब आएगा और कैसे आएगा। अभी तुम बच्चे समझते हो जैसे बाप है वैसे हम आत्मा भी हैं। हम आत्मा है, वो भी आत्मा है। बाप का है अलौकिक जन्म, हमारा तो लौकिक जन्म होता है, पर तो बाप का लौकिक जन्म नहीं है। परमात्मा कभी भी अपने लिए शरीर नहीं बनाते। हम सब बच्चों का पतित से पावन बनने के लिए, उद्धार करने के लिए हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो उनको इसलिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो वो अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों, हाँ जी, तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, कितना अच्छी रीति आकर हमें पढ़ाते हैं। तुम खुद कहते हो ये तो वही हमारा बाप है, 5000 साल पहले भी हमको इसने पढ़ाया था। जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं, हम सभी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं, वही टीचर रूप में राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए। सुन सुनकर गद गद होना चाहिए, अगर छी छी बने तो वह खुशी आएगी ही नहीं, खुशी आएगी ही नहीं। बस कितना भी माथा मारे, वे फिर हमारी हमारे जाति भाई नहीं। यहां मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वो सभी है हद की बातें। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। क्या है हमारा सरनेम? बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानता ही नहीं, उनको कोई जानता ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा कौन है। वो तो समझो ब्रह्मा हुआ था, मर गया वो तो, परंतु ये नहीं मालूम कि ये ब्रह्मा बाबा जिंदा बैठा। सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं है। चित्र भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र भी हैं, फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते, ब्रह्मा की बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में दिखा देते हैं, सूक्ष्म वतन में कोई होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन में सिर्फ संकल्प होते हैं, वहां कुछ
दिखा रहे हैं।
हाँ जी,
दिखा रहे हैं।
कहां दिखा रहे हैं? हम कह तो रहे हैं सूक्ष्म वतन में कुछ होता नहीं। बाबा सीधी सी बात करे, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं होता, केवल और केवल संकल्प का सपना होता है, बस और कुछ भी। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहां से आ गया? वहां कैसे अडॉप्ट करेंगे? वहां कोई शरीर तो है ही नहीं ना। सूक्ष्म वतन में शरीर होता ही नहीं है, सूक्ष्म वतन में है सूक्ष्म शरीर। बाप आकार से पुतला भी निकलेंगे ना भाई जी, पुतले को तो पकड़ा जाएगा ना भाई जी, पुतले को पकड़ सकते हैं, परंतु वहां केवल लाइट का आकार दिखाई देता है, होता नहीं। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, होता नहीं दिखाई देता है।
एक फीलिंग है भाई जी का।
हाँ जी,
एक फीलिंग कह सकते हैं।
जिसको दिखाई देगा वो फीलिंग करेगा। फिल्म देखते हैं तो पूरी फिल्म हम जब देखते हैं कोई भी, तो हमें ऐसा लगता है बिल्कुल रियल लाइफ चल रही है। फीलिंग तो हमें आएंगी, वहां पर फिल्म दिखाई देती है, गूंगी फिल्म।
स्वप्न स्वप्न की जैसा कह सकते हैं ना, स्वप्न की जैसा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वप्न संकल्प, सपना और सूक्ष्म वतन एक ही बात है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि जग एक सपना है, यहां कुछ नहीं अपना है। बहुत जन्मों के अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया है। ये पुरुषोत्तम संगम योग गीता का एपिसोड है जिसमें पवित्रता मुख्य है। अतिथि के पावन कैसे बनेंगे ये किसको पता नहीं। साधु संत आदि कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझे एक बाप को याद करो, तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। वे तो बाप को ही नहीं जानते, वो कहेगा कैसे, वो जानते नहीं है, उनको क्या पता हो। अब बाप आकर बता रहे हैं, गीता में बाप ने कहा है इन साधुओं का भी आदि साधुओं आदि का भी उद्धार मैं आकर करता हूं। उस दुनिया वाली गीता में ही लिखा गया कि मैं साधुओं आदि का भी उद्धार करने आता हूं, उद्धार करता हूं। बाप समझाते हैं शुरू से लेकर अब तक जो आत्माएं पार बजा रही हैं सभी का जन्म ये अंतिम जन्म है, सब उसका भी ये अंतिम जन्म है। यहां फिर ब्रह्मा बना, छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म इसने पूरे किए, 500 लास्ट तक। अभी तक बच्चों की बुद्धि का ताला खुला हुआ है, अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे, अंधे की औलाद अंधे थे। ये लक्ष्मी नारायण है बुद्धिमान, बुद्धिहीन पतित को कहा जाता है। मुख्य है पवित्रता, लिखते भी है माया ने हमें गिरा दिया, आप क्रिमिनल बन गए, आंखें क्रिमिनल बन गए। बाप तो गली गली सावधान करते रहते हैं बच्चे कभी माया से हार नहीं खाना, माया से कभी हार नहीं खाना। अभी घर जाना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई के हुई, हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। क्यों पावन बन रहे हैं, क्योंकि हमें पावन दुनिया चाहिए। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है, बाप तो योग नहीं लगाएंगे। बाबा पतित थोड़े ही बनता है जो योग लगावे। बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, तुमने ही मांगनी की है कि आकर हमें पतितों को पावन बनाओ। तुम्हारे ही कहने से मैं आया हूँ, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ, सिर्फ मन मना भाव। भगवानो वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को सब भूल गए हैं। बाप है पत, श्री कृष्ण है सेकंड नेक्स्ट टू गॉड, वे परम धाम का मालिक, वो वैकुंठ का मालिक। शिव बाबा परम धाम का मालिक और कृष्ण वैकुंठ का मालिक। तो वैकुंठ कब होता है, वैकुंठ कब होता है,
नहीं होता
संगम, संगम पर होता है जब कृष्ण होता है। सतयुग में तो कृष्ण होता ही नहीं, सतयुग में तो नारायण होता है। सूक्ष्म सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं, सभी में नंबर वन है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं, बाकी तो सब पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी ना सके, स्वर्ग में तो सब जा भी ना सके। तो तुम तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी जिगरी खुशी होनी चाहिए कि कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझ जाते हैं, विकार में जाते हो फिर बाबा के पास क्यों आते हो, तो क्या कहेगा वो, बाबा क्या कहेंगे उसको, या वो बाबा को क्या कहेगा, क्यों आते हो बाबा के पास जब तुम पवित्र नहीं रहते? कहते हैं क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहां आता हूं, शायद कभी तीर लग जाए। आप बिगर हमारी सदगति कौन करेगा? सदगति तो करनी आपने है ना, तो मैं और किसके पास जाके क्या करूं? इसलिए आकर बैठ जाता हूं, इसलिए मैं आकर के क्या करता हूं, बैठ जाता हूं। माया कितनी प्रबल है, निश्चय भी होता है, अंदर से पता भी है, पर तू पक्का निश्चय नहीं हो रहा है, इसलिए दृष्टि भी नजर भी साफ नहीं हो सकती, नजर में विकार रहेगा। हम को पतित से पावन गुल गुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलना नहीं। सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा, आता रहूंगा तो कभी मैं सुधर जाऊंगा ना, क्योंकि आप ही तो एक सुधारने वाले हो। हमको ये निश्चय है कि आपसे ही हमें सुधरना है, ठीक है ना? अभी नहीं सुधरे हैं पर सुधर जाऊंगा। बाबा को ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू, सब जुड़ जाएगा। हाँ, बाबा वो ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है, फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू, क्योंकि हर 5000 साल बाद ऐसे ही होता है। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं, इसमें बाबा क्या कर सकता है, इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा कहे शायद इनका पार्ट ही ऐसा है। सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं, सब तो राजे रानियां नहीं बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत नहीं छोड़, आगे जा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है, तो छिपाना नहीं है। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। सदा खुशी, सदा शुद्ध नशा रहे, शुद्ध नशा रहे, कि बेहद का बाप हमें पतित छी छी से गुल गुल कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। अब कौन मिला हमें? बाबा मिला है, उनका साथ मिला है, और हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। वरदान, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वाप परिवर्तक भाव, खुद को बदलने वाले बनो। जब नेगेटिव अथवा व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं, आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्प को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ, सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, तब स्वाप परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन, स्वयं प्रति और सर्व प्रति आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। सच्चे कर्म योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9692131068 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।